और जानिया जो है वो नहीं निकाह करती इल्ला जानिन ओ मुशरिक, ओ मुशरिक, या जानी मर्द से या फिर मुशरिक मर्द से। वहुर्रिमा ज़ालिका अल मुमिनीन, और हराम कर दिया गया ये, यानी क्या चीज, ज़ालिका क्या है, जिना करना, ये ईमान वालों पे तो हराम है, हराम है। अच्छा अब मुझे बताएं, जो लोग कहते हैं कि कहाँ पे हराम है, कहाँ पे हराम है, तो ये हराम लिखा हुआ, इतना भी अगर देखना। बाकी इस आयत के दो मफहूम है, एक तो आप ये देख लेना कि एक वो है वो लोग जो यानी इन चीजों के अंदर पड़े होते हैं, जो पाक दामनी की तरफ नहीं आना चाहते, बस वो जानी मर्द है या जानी औरतें हैं, उनका बस काम ही यही है, यही दोस्तियां की, यहाँ ये इसके साथ दोस्ती, उसके साथ दोस्ती, फिर उनके साथ नाजायज ताल्लुकात, पता नहीं कितने के साथ वो सोए होते हैं, कितने के साथ रहे होते हैं, पता ही नहीं होता। ठीक है, तो उस इतबार से आप देखें कि जब किसी को पता चल जाए ना, इसका मफहूम ये है कि जब किसी को पता चल जाए कि ये बदकार मर्द है, या किसी मर्द को पता चल जाए ये बदकार औरत है, तो उस के साथ वो निकाह ना करे, बल्कि पाक दामन मर्द को चुने, पाक दामन औरत को चुने। ठीक है, यानी ये उनकी बात हो रही जिन्होंने तौबा नहीं की। अगर किसी ने सच्ची तौबा कर ली उसका मामला अलग है, मगर ये तौबा के बगैर जो बस उनका काम ही है, वो इतने आजाद है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो इधर उधर यही हरकतें करते रहते हैं। तो जो जानी मर्द के को ऐसी औरत को नहीं चुनना, और इसके ऊपर आप देखें कि एक हदीस भी आती है जिसमें मरसद बिन मरसद एक सहाबी है, तो वो इस्लाम लाने से पहले उनाक नाम की एक औरत के साथ उनका ताल्लुक था, लेकिन इस्लाम लाने के बाद वो जाहिर है इससे तो ताइब हो गए, उसको छोड़ दिया हुआ था। लेकिन वो औरत जब ये मक्का गए एक दफा, कुछ कैदियों का काफी मजबूत थे, काफी उनके यानी स्ट्रॉन्ग आदमी थे, तो एक दफा जब मक्का गए तो वहां पर वो औरत मिल गई और उसने दावत दी कि आओ मेरे साथ रात गुजारो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला ने जिना को हराम करार दिया। उस औरत ने कहा कि अगर तुम नहीं आओगे ना तो मैं ये बाकी लोगों को जगा दूंगी। और वो कैदियों को छुड़ा के लाते थे, जो जिनको बेचारा मुसलमानों को कैद में रखा होता था और वो वहां पर बेचारे मुश्किलों में थे, तो ये उनको उठा के ले आते थे। तो कहते हैं कि उसने शोर मचा दिया, और जब इन्होंने इनकार किया ना तो उसने सबको जगा दिया, तो लोग इनके पीछे भागे, और ये भागते भागते किसी गार में जा घुसे, और वो आए, उन लोगों ने देखा दुखा, उनको नहीं नजर आया, अल्लाह ताला ने उनको अंधा कर दिया, और ये फिर वो अपने जो कैदी जिसको छुड़ा के लाए थे उसके साथ ये वापस आ गए मदीना। तो जब यहाँ पे आ गए तो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होके इन्होंने पूछा, या रसूल्ला क्या मैं उन आप से निकाह कर लूं? तो कहते हैं मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो मर्तबा पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और मुझे कोई जवाब नहीं दिया, हत्ता कि ये वाली आयत नाजिल हो गई कि जानी मर्द सिर्फ जानिया औरत या मुशरिक औरत से निकाह करेगा, और जानिया औरत सिर्फ जानी मर्द या मुशरिक मर्द से निकाह करे। मोमिनों पर ऐसे निकाह को हराम करा दिया गया, यानी ऐसे निकाह को, यानी ऐसी ये इस काम करने को हराम करार दिया गया। यानी अब कोई औरत अगर इन कामों के अंदर पड़ी भी है तो आदमी को चाहिए कि ऐसी औरत से निकाह ना करे, क्योंकि वो ईमान वाला है, उसका ईमान तकाजा करता है कि वो पाक दामन औरत से निकाह करे। ठीक है, दूसरा मफहूम उलमा ने ये लिया है कि यहाँ निकाह से मुराद जमा है और बदकारी का अमल है, कि अगर कोई बदकारी करता है ना तो वो बदकारा औरत से ही कर सकता है, क्योंकि कोई नेक शरीफ औरत उसके साथ ऐसा काम करने के लिए नहीं आएगी, और बदकारा औरत बदकार मर्द से ही ये करेगी। ये ताल्लुक बदकारों का ही आपस में हो सकता है या मुशरिकों का हो सकता है, ये तौहीद वालों का नहीं हो सकता कि वो अपनी बीवी या अपने शौहर को छोड़ के और किसी और के साथ ऐसे ताल्लुकात रखे। तो अहले ईमान जो होते हैं वो तो बहुत पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाले होते हैं। तो ये एक ये भी इसके अंदर ना एक इशारा भी मिलता है इस आयत के अंदर। वाकई इफ के अंदर क्या हुआ था आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, कि वाकई इफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दामन बीवी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर तोहमत लगा दी मुनाफिकों ने, उन जालिमों ने तोहमत लगाई, तो अल्लाह ताला ने ये आयत में एक इशारा दे दिया कि जानी मर्द जानी औरतों के लिए, जानी औरतें जानी मर्दों के लिए कैसे हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पाक जात के घर में कोई बदकार औरत हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं ना, उनको एक दूसरे ही पसंद होते हैं। आप देख लें आज मर्द भी वैसे ही होते हैं, वैसे ही औरतें भी होती हैं, जिन्होंने ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी इसका जो निकाले जुलूस निकाले, उनमें कितने ही मर्द भी थे, उनको वो भी उसी किस्म के टेस्ट के होते हैं, फिर उनको वही चीजें पसंद होती हैं, वो उन औरतों को भी वही चीजें पसंद है, वो एक जैसी सोच रखते हैं ना, तो उनकी शादियां आपस के अंदर होनी चाहिए। और इस तरह जो इस तरह के गंदे कामों में मुलव्विस हो, वो फिर उनको कोई और तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। लिहाजा ये उनके लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबी को मना कर दिया कि ऐसी औरत के साथ नहीं शादी करो, क्योंकि वो औरत ऐसी नहीं है इस काबिल के आप उसको अपने घर में रखें। इसी तरह एक शख्स ने उम्मे महजूल नामी एक औरत से निकाह करने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की। वो औरत जिना करती थी और उस पर उजरत लेती थी, यानी प्रोस्टिट्यूट थी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने भी यही आयत पढ़ी, यानी जो तवाइफे ऐसे धंधे करने वाली हैं ऐसे, उनके साथ शादियां मत करो, क्योंकि वो एक गंदे काम के अंदर है ना, उन्होंने तौबा की भी ना, वो उस काम को बुरा समझती हैं। तो हजरत हसन बसरी फरमाते हैं ये मुमानत हर जानी और हर जानिया के लिए आम नहीं है कि जो बेचारे किसी से अगर कभी भूल चूक से हो गया और उसने तौबा कर ली, ये उसके लिए नहीं है, बल्कि उस जानी और जानिया के लिए खास तौर पे है जिसको कोड़े लग चुके हों और वो तब आपस के अंदर ही निकाह करें। और इसी तरह उनके लिए हैं जो इस काम को करने में कोई कबाहत महसूस नहीं करते और वो इन्हीं कामों में रहते हैं, ऐसे उनके लिए ये कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आगे कसफ के बारे में आयत आ रही है। कसफ का माना क्या होता है? कॉफ वैल फै, इसका मतलब होता है फेंकना। ठीक है, और ये जिना की तोहमत लगाने के लिए आता है ये लफ्ज, ये के कजफ, इसलिए कि मैं आपको हद कजफ बताऊंगी ना, हद मतलब होती है वो सजा, अब मैं ना हो के हद कहती रहूं आपको ना समझ आए, हद वो सजा है जो अल्लाह ताला ने मुतय्यन की है ना, जो अल्लाह ताला ने रखी है, कि वैसे जैसे चोरी की सजा, कत्ल की सजा, जिना की सजा, शादीशुदा की और कमारे की, मतलब ये चंद एक ही चीजें हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दी। बाकी चीजें कोई करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर सजा ही नहीं है, मगर उस वक्त की अदालत उसके ऊपर सजा देगी। ठीक है, लेकिन ये वाली सजाएं अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है। मुहारबा की भी सजा उसके अंदर आती है, वो भी हम सूरह मायदा में पढ़ चुके हैं। अच्छा अब देखिए, वल्लदीना यरमून अल मुहसनात, और वो लोग जो तोहमत लगाते हैं किन के ऊपर? पाक दामन औरतों के ऊपर, ऐसी औरतें जो ये जिनाकार नहीं होती, जो जिना से पाक होती हैं, जो बालिग आकिल मुसलमान अकल रखने वाली समझ रखने वाली, वो मुहसनात। सुम्मा लम यातू बि अरबाती शुहदा, फिर वो नहीं ला सके चार गवाह। अब एक बंदा खड़ा हो गया या कोई औरत है, उसने कहा कि जी फलां है ना, वो तो उसके साथ है और उसका उसके साथ मतलब गलत ताल्लुक, जिना किया इसने ना, तो वो जो है या तो वो चार गवाह लेकर आए अपने अलावा, खुद तो वो है बोलने वाला, लेकिन अपने अलावा चार गवाहों को लेकर आए जो ये गवाही दें कि हमने अपनी आंखों से देखा, ये नहीं कि मैंने किसी से सुना था, मैं सुना है ऐसा है, नहीं इसकी तो रेपुटेशन ही नहीं ठीक है, लिहाजा ये तो यही करती होगी, या सुना है ये उसने मुझे बताया है, या नहीं, खुद अपनी आंखों से देखा। और जैसे कि मैंने अभी आपको हदीस बताई कि ऐसे गवाही देनी है कि ये नहीं कि साथ बैठे हुए थे, ये नहीं कि हाथ पकड़ा हुआ था, ये नहीं कि एक बिस्तर में थे, ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी कि तुमने ऐसे देखा जैसे सिलाई सुरमा दानी में जाती, ऐसे देखा। तो अगर ऐसे देखा है तो उसकी वो गवाह होगा, वरना नहीं। कि भाई हाँ, वो किसी बाग में बैठे हुए थे, या किसी बेडरूम में थे, या किसी घर से निकलते हुए देखा, तो जरूर ऐसा ही किया होगा, ये नहीं। ठीक है, इस्लाम ने इसको देखें देखना आपकी कितना डिफिकल्ट बना दी है। ऐसे नहीं, वरना तो हर तरफ सजाएं मिलती नजर आती, लेकिन इतनी बड़ा इसको बनाया कि ये जब चार गवाह होंगे तब किसी को, चाहे शादीशुदा है चाहे गैर शादीशुदा है, तब उसको सजा मिलेगी, जानी को और जानिया को। ये जो पीछे हमने नंबर 2 आयत में पढ़ी है ना, वो सजा पाने के लिए उस तक पहले तो मैंने आपको बताया ऑब्स्टिकल्स कितने सारे बताए ना, मैंने आपको रुकावटें बताई है ना, उसके बावजूद कोई जिना कर लेता है, उसको सजा किस सूरत में मिलेगी? जब वो इतना ही कहीं बेहया हो जाए कि चार लोग उसको देखने वाले हों अपनी आंखों से, और एक बंदा खड़ा होके ये कहे कि हाँ, ये इसके मैंने ऐसा देखा है, और अदालत में जाए, तो फिर अब उसको सजा मिलेगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि वो चार गवाह नहीं ला सकता, तीन गवाह ले आ सकता है, दो ला सकता है, एक ला सकता है, या एक उनमें से शक में है, वो कह रहा है मुझे अच्छी तरह नहीं पता, वैसे मैंने ऐसे नहीं देखा, लेकिन मैंने बस दोनों को बैठे हुए देखा है, या दोनों को कमरे के अंदर अकेले देखा है, या मैंने ऐसे देखा, ये नहीं गवाही कबूल होगी। तब क्या होगा? तब ये जो बोलने वाला है ना, जो इल्जाम लगा रहा है, फजली दू हम समानी न जलता, इनको कोड़े मारो 80 कोड़े। अब ये एक इल्जाम लगाने वाला, और मिसाल के तौर पे वो तीन गवाह लेकर आया, और तीनों गवाही दे रहे हैं कि हमने इस तरह देखा, लेकिन चार तो नहीं है ना। इन ये जो बोलने वाला था और ये इसके साथ जो तीन थे, इन चारों को ये हद्दे कजफ लगेगी कि इनको 80 कोड़े मारो। क्यों, इनका क्या कसूर है? इनका कसूर ये है कि इन्होंने जुबान क्यों खोली किसी के ऊपर तोहमत लगाने में। हो सकता है बात ठीक हो इनकी, हो सकता है सच्ची बात हो, लेकिन फिर भी इस्लाम नहीं पसंद करता कि मुआशरे के अंदर बेहयाई की बातें फैलें, अनलेस के चार गवाह इसको देख लें और एक बंदा लेकर आए इसको अदालत के अंदर, तब तक कोई किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता। आपको क्या पता झूठा है इल्जाम के सच्चा है इल्जाम? अगर सच्चा है चार गवाह लाओ, अगर झूठा है तो तुम कोड़े खाओ। समझ आ गई बात? सच्चा है तो क्या है, चार गवाह लाने पड़ेंगे इल्जाम लगाने से पहले। झूठा है तो तुमने जुबान क्यों खोली, कोड़े खाओ, तुमने क्यों किसी पे इल्जाम लगाया? इससे क्या होगा, ये माशरे में जो स्कैंडलाइजेशन होती है ना, ये खत्म हो जाएगी। स्कैंडल बनाए हुए हैं इतने, हर कोई, और एक खानदानों में एक भी अम्मा जरूर होती है जो किसी ना किसी बच्ची के ऊपर कोई इल्जाम लगा के, फिर फलाने ही उसके साथ है और उसके साथ और ऐसे है और ये करती है, और ऐसी एक भी अम्मा जरूर होती है। इसी तरह कॉलेजों के अंदर, इसी तरह ऑफिस के अंदर वर्किंग वुमेन के ऊपर लगा देते हैं, इस तरह इस बहुत ही आम ही समझा हुआ है इसको कि कोई भी खड़ा होता है ना, उसकी जुबान तो अल्लाह ताला ने आजाद उसको दी भी है, तो वो अपनी जुबान से ये काम लेता है कि बस उसको हर वक्त ये टो रहती, मैं पहले देखता तो रहूं कहाँ पे किसको किसके साथ जोड़ दूं। तो इस्लाम ने ये हद मुकर्रर करके माशरे को पाक कर दिया और औरत की इज्जत को महफूज कर दिया। देखिए, औरतें कहती हैं ना, हमारे तो क्या कोई हकूक ही नहीं दिए इस्लाम ने, जब मोहसनात कह दिया तो कितनी बड़ी बात है। हालांकि जो आदमी है उसके ऊपर भी इल्जाम लगाना, उसके ऊपर भी उलमा कहते हैं कि यही सजा है, उलमा ये कहते हैं कि यही सजा है, लेकिन यहाँ पे औरत की क्यों बात आई कि औरत के ऊपर तुम नहीं बोहतान लगा सकते, इसलिए क्योंकि तुम उसकी सारी जिंदगी खराब कर दोगे, उसकी इज्जत खराब हो गई तो कल को कोई उसके साथ शादी करने वाला नहीं होगा, और वो यानी उसकी सारी लाइफ खत्म हो जाती है ना। अगर वो शादीशुदा है तो हस्बैंड उसको छोड़ देगा, अगर वो नहीं है तो तब भी उसका कहीं रिश्ता नहीं आएगा, उसके ऊपर तुम जुबान दराजी कर नहीं सकते। लिहाजा ऐसी चीजों को स्कैंडलाइज नहीं किया जा सकता, ऐसी बातों को वहीं पे दबा दो, जुबान को बंद कर दो, और इससे क्या होगा, बेहयाई के चर्चे भी नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि देखिए, आप जब बेहयाई की बातें बहुत होने लगे ना, फलाने ऐसे, फलां ऐसे, वो भी ऐसे करता है, वो भी, इसने भी ऐसे कर, तो क्या होगा, बाज लोग जो वैसे जुर्रत नहीं करते उनको भी जुर्रत आ जाती है, अब वो भी जब माशरे में चीजें आम हो जाती हैं तो फिर लोग इसी वजह से तो जुर्रतें करते हैं, फिर कहते हैं फलाना भी तो ऐसे करता है, आजकल तो ये होता ही है, तो क्या हो गया अगर मैंने भी कर लिया, तो फिर ये चीजें आम होना शुरू हो जाती हैं। देखिए ना, ये आपको ड्रामों फिल्मों में वो चीजें दिखाते हैं, फिर ही वो माशरे में भी आम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि देख देख के लोग उनके आदी हो जाते हैं, अब वो बिग डील ही नहीं रहती, तो इसलिए उसको वहीं दबा दो। हाँ, अगर तुम्हें इल्जाम लगाना है कि ये फलां औरत ऐसी है, जाओ जाके चार गवाले कराओ। और औरत को कितना बड़ा तहफ्फुज़ दिया है, देखिए ना, और सबसे बड़ी इज्जत की बात होती है, देखिए जान से भी बड़ी इज्जत की बात इंसान समझता है, खास तौर पे औरतों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि मेरी इज्जत के ऊपर कोई हर्फ ना आए। कोई भी एक अच्छी औरत, मोहसिन औरत होगी ना, उसको होगा कि मेरी इज्जत पे कभी कोई हर्फ ना आए, चाहे वो कोई बेवा है, चाहे कोई तलाक याफ्ता है, चाहे वो कंवारी है, कितनी आराम से लोग उठ के बातें बना लेते, तो ये बातें बनाने वाले लोग सुन लें कि अगर आज इस्लामी माशरा होता ना तो कोड़े पड़ रहे होते, खुद ही सबने ठीक हो जाना था फिर। लेकिन चूंकि इस्लामी माशरा नहीं है, ये वाली सजाएं नहीं आज दी जा रही, तो इसलिए देख लें आज फिर कितने स्कैंडल है, अखबारों में स्कैंडल है, जो न्यूज में स्कैंडल है, हर कोई स्कैंडल बना रहा है। और जो काजिफ भी है ना, जो जो इल्जाम लगाता है, उसको भी बालिग आकिल होना चाहिए, ताकि वो तभी उसको सजा मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पास अकल है, तुम बालिग हो, बच्चे की बात को थोड़ी कोई देखता है, और आजाद हो वो, और बोलने वाला हो, तो तभी बोल के बताएगा ना। ये कुछ शराइत है जिसकी वजह से फिर काजिफ हद का जुर्म उसके ऊपर फिर लगेगा। तो ये भी जुर्म क्या आपस में राजीनामे से खत्म हो सकता है अगर ये आपस में कर दिया जाए? तो नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और देखें एक बात ये भी कि अगर शौहर बीवी पे इल्जाम लगा दे, बीवी शौहर पे इल्जाम लगा दे, तो बीवी भी या तो गवाले कराए, नहीं तो शौहर के ऊपर ऐसे ही इल्जाम लगाते रहना, या शौहर बीवी पे इल्जाम लगा दे और फिर उसको हमेशा वो ताने दे दे के मार दे, तो जो शोहर बीवी पे इल्जाम लगाएगा ना, उसके ऊपर लियान है, वो तो और भी बड़ी बात है, कजफ नहीं है फिर उसके ऊपर, कजफ वो उसके ऊपर है जो कोई भी शख्स, कोई मर्द या औरत, किसी भी मर्द या औरत के ऊपर लगा, लेकिन अगर शोहर लगाता है तो वो लियान होता है, उसकी आगे बात आ रही है, ठीक है। तो इसलिए सुनी सुनाई बातों पे आगे से आगे नहीं चला देना चाहिए कि वो उसके साथ ऐसे है और उसका इसके साथ ताल्लुक है और ऐसे है, नहीं ये नहीं कर सकते। बदकिस्मती से चूंकि हम इन अहकाम को अहम ही नहीं समझते, चाहे सजा दुनिया में नहीं मिल रही, आज कोड़े किसी को नहीं लग रहे, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि अल्लाह के हाँ ये कोई कम जुर्म है? अगर कम जुर्म होता तो इतनी बड़ी सजा ना, तो 80 कोड़े कोई छोटी बात नहीं है, 80 जानी को और जानिया को 100 है, उनसे सिर्फ कम 20 कोड़े कम है यहाँ पे काजिफ के लिए। तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला के हाँ ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना सीरियस इशू है। तो अगर यहाँ पे नहीं भी किसी को सजा मिलती तो आखरत तो है ना एक, फिर वहां क्या होगा? यहाँ पे तो हो सकता है किसी के ऊपर हद नाफिस हो जाए, वो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसको आखरत में माफ कर देगा, लेकिन जिसको यहाँ पे हद ही जारी नहीं हुई और वो यही काम करता जा रहा और सोचता है कौन सा किसी ने पूछना है, इस्लामी मुमलिका तो है नहीं, तो इसके ऊपर सोचे कि आखरत में फिर क्या बनेगा उस बंदे का। और एक ईमान वाले को तो इससे डरना चाहिए कि आखिरत में मेरा क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वला तकबलू लहुम शहादतम अबदन, और कभी उनकी शहादत, उनकी गवाही को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो कौन है ये, जो इल्जाम लगाने वाला, जो चार गवाह नहीं ला सका, क्योंकि एक आदमी ने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया और उस वो चार नहीं ला सका था, 3 ला सका, और चौथा जो था उसने कहा मैं कंफ्यूज हूं, मैंने सच्ची बात है मैंने देखा नहीं है उस तरह से कि भाई जो अमल हो रहा है वो नहीं देखा मैंने, हाँ इनको बिस्तर में साथ देखा था। तो तब भी सबको कोड़े लगाए गए, देखा ना, अब आप ये इन जिन्होंने कहा था कि हमने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने भी इल्जाम लगा था, इसको नहीं लगाए गए, जाहिर है ये जो चौथा गवाह था इसको तो नहीं, लेकिन जो बाकी थे उनको कोड़े लगाए गए कि तुमने फिर कैसे बात लेकर आए हैं। तो ना कोड़े भी लगाए जाएंगे, नंबर 1 ये सजा, नंबर 2 वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, इनकी कभी गवाही कबूल नहीं होगी किसी भी मामले में, ये गवाही देना चाहेंगे तो इनको गवाही के लिए देने की इजाजत नहीं होगी। वह उलाइका हुमुल फासिकून, और यही लोग हैं जो फासिक हैं, यानी तो अल्लाह की हदों को तोड़ने वाले, यानी उन्होंने मुंह खोला क्यों, मुंह खोला था तो गवाह लाते, नहीं तो मुंह ना खोलते। ये जुर्म है ना इनका। और आज मुंह देखें किस तरह से खुले पड़े हैं कि हर एक के बारे में लोग इल्जाम लगाते हैं, हर एक के बारे में आदत ही लोगों को पड़ चुकी है हमारे माशरे में। तो यानी अल्लाह माफ करे, कोई बेचारी औरत को सिर्फ शादीशुदा पे भी कर देते हैं, लेकिन जो मसलन डिवोर्स्ड है या बेवा है या कमारी लड़की है, तो सारे आजाद समझते हैं अपने आप को कि हम जो मर्जी इसके ऊपर इल्जाम लगाते रहे, और इल्जाम लगा के भी आराम से बैठ जाते हैं, कोई उनको इसके ऊपर पेशावा नहीं होता। और कहते तो मैं तो सच ही कह रही थी या जो भी, और ना देखी होती बात ना कुछ है, बस अपनी स्पेकुलेशन से। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादी ज़ालिका व अस्लहू, और सिवाय उन लोगों के जो तौबा कर लें इसके बाद और इसलाह कर लें। तो मुफस्सिरीन का आइम्मा का इस पे इख्तलाफ है कि क्या फिर उसके बाद उनकी तौबा, सॉरी, उनके बाद उनकी गवाही कबूल की जाएगी या नहीं। तो बाज कहते हैं कि अगर ये कूड़े खाने के बाद, कूड़े तो लगेंगे ही, उसके बाद ये तौबा कर लेते हैं और इसलाह कर लेते हैं, आइंदा के लिए अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, तो फिर इनकी गवाही कबूल की जाएगी और ये फासिकों में से नहीं होंगे। बाकी कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया वला तकबलू लहुम शहादतन अबदन, कभी भी नहीं इनकी गवाही कबूल होगी। तो इसलिए कूड़े खा के ये तौबा कर लें, इसलाह कर लें अपनी, अल्लाह ताला इनको माफ कर देगा, लेकिन इनकी गवाही नहीं कबूल होगी और फासिक ये रहेंगे। फ़ाइन अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला बेशक बख्शने वाला मेहरबान है। तो जो तौबा करे अल्लाह ताला उसको बख्श सकता है। लिहाजा अगर ऐसा काम कभी भी हो गया हो जिंदगी के अंदर, इंसान की जुबान है ये रुकती तो है नहीं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ, और बेसमझे सोचे समझे ही बोल देते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर तौबा करनी चाहिए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सात हलाक करने वाली चीजों से बचो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन से हैं, मुबीकात कौन से हैं जो हलाक करने वाले गुनाह हैं। आपने फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, जिस शख्स के कत्ल को हक के सिवा अल्लाह ने हराम किया उसको नाहक कत्ल कर देना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन पीठ मोड़ना, और पाक दामन मुसलमान औरत को जो बेखबर है बेचारी उसको जिना की तोहमत लगा देना। तो अच्छा, फिर ये कजफ की सजा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला पे भी जिन्होंने इल्जाम लगाया था ना, तो अल्लाह तआला ने बरात में आयात नाजिल कर दी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये, चूंकि आयतें उतनी थी कि कजफ करने वालों को इनको कोड़े लगाए जाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मर्दों को कोड़े लगवाए थे, हसान बिन साबित को और मिस्ता बिन असासा को, और एक औरत को कोड़े लगाए थे हमना बिनते जहश को। ज़ैनब बिनते जहश उम्मातुल मोमिनीन में से है, उनकी बहन है ये हमना। तो बाज दफा वो होता है ना कि रिश्तेदार जो होते हैं वो और भी बढ़ बढ़ के आगे करते हैं, तो बहन की चूंकि ये सौकन थी तो इसलिए वो ज्यादा ही, ज़ैनब बिनते जहश ने तो कुछ भी नहीं कहा लेकिन इन्होंने आगे बढ़ के इसके अंदर हिस्सा लिया था, तो इनको भी कोड़े लगे थे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कितना बड़ा गुनाह है, ये कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है और इसको हमें भी मामूली नहीं समझना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने लियान के बारे में कानून दिया है कि लियान क्या होता है। मैंने जैसे आपको बताया, लोग, आम लोग अगर बोले तो वो तो चार गवाह लेकर आए कि साबित करें, जो कहें कि हम ऐनी शाहिद हैं, हमने आंखों से देखा ये अमल होते हुए। अगर शौहर देख लेता है तो शौहर तो घर के अंदर ही होता है या उसका आना जाना घर में लगा रहता है, अब क्या वो भाग के जाए और चार गवाह लेकर आए? अगर नहीं ला सकता तो क्या वो कजफ की सजा भुक दे और उसके बाद वो इस औरत के साथ रहे जिसको उसने ऐसे भेजा है, देखा है, वजह उसकी गैरत कितनी होती है, और वो तो कभी भी ऐसा देख भी नहीं सकेगा, वो कहाँ से लाए चार गवाह? और दूसरी ये बात कि वो कैसे फिर ऐसी औरत के साथ गुजारा करेगा? तो दोनों चीजें उसके लिए मुश्किल है। तो उनके लिए ये सिर्फ मर्द के लिए कि मर्द औरत को देखे, औरत मर्द को देखे तो वो नहीं लियान कर सकती, मर्द औरत को अगर देखे। तो मर्द अगर औरत को देखता है ऐसी कंडीशन में, अपनी बीवी को, बीवी को, औरत को नहीं, किसी औरत को नहीं, अपनी बीवी को ऐसे देखता है किसी और मर्द के साथ, तो वो क्या काम करे फिर? उसके लिए ये वाला नहीं है जो कजफ वाला हुक्म है, ठीक है, इसलिए उसकी अलग कानून है। वल्लदीना यरमूना अजवाजम, और वो लोग जो इल्जाम लगाते हैं अपनी बीवियों पर, यानी वो अपनी बीवियों पर ये इल्जाम लगाते हैं कि हमने इनको ऐसे देखा है, वलम यकुन लहुम शुहदा, और उनके पास तो गवाह नहीं है। कौन से गवाह नहीं है? जो चार गवाह हैं ये उनके पास तो है नहीं, इल्ला अनफुसुहुम, सिवाय अपनी जात के कि मैंने खुद ही देखा है। क्योंकि ये मामला डिफरेंट है ना, अब वो किसी और को अगर किसी ने देख भी लिया और चार गवाह नहीं है तो चुप कर जाए वहां पे, चुप करके अपना रास्ता ले। लेकिन जहां पे बीवी का मामला आ जाए वहां पे कैसे खामोश रहे? तो सिर्फ अपनी जात के बारे में बात है, अपनी जात की है कि गवाही है, तो वो क्या करे? फिर वो फशहादतु अहदिहिम अरबा शहादतिन बिल्ला, तो वो गवाही खुद वो गवाही दे, तो गवाही होगी उनमें से एक की चार गवाहियां अल्लाह के पास, अल्लाह के साथ। यानी शौहर चार दफा कस्में खाएगा और वो उसकी चार कस्में जो होंगी वो चार गवाहों के बराबर होंगी। और वो क्या कसम खाएगा कि मैंने इस औरत को इस तरह देखा इस काम के अंदर और मैं सच्चा हूं। ये सब चीजें वो लोगों की मौजूदगी में अदालत में बताएगा। तो वल खामिसा, तो और पांचवी दफा, देखिए यहाँ जो चार दफा चार गवाह लाने थे तो चार गवाहों की जगह वो खुद ही चार दफा कसम खा के कह रहा है ना, तो उसकी चार गवाहियां हो गई समझ ले। वल खामिसा तू, और पांचवी दफा कहे अन्ना लानत अल्लाह अलैहि इन काना मिनल काज़िबीन, के मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठा हूं। इस वजह से इसको कानून लियान कहते हैं, क्योंकि लानत भेजना का मामला है ना इसके अंदर। सोचें लानत कितनी बड़ी चीज है कि जब कोई अपने ऊपर ऐसा कह दे तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो आखिर में क्या कहे कि मेरे ऊपर अल्लाह की लानत है, यानी मैं अल्लाह की रहमत से दूर हो गया अगर मैं झूठा हूं। ये जब उसने कह दिया तो अब औरत को रजम किया जाएगा, और वो रजम से तब बच सकती है क्योंकि इसने कह दिया ना, अब इसकी गवाही मान ली गई, अब औरत के ऊपर सजा है। लेकिन मसलन औरत कहे कि ये मेरा हस्बैंड झूठा है, हो सकता है वो झूठा हो, तो फिर औरत को भी चार गवाहियां लानी होंगी, और वो चार गवाहियां तो नहीं ला सकती, तो लिहाजा वो भी चार दफा ही कसम खाएगी और पांचवी दफा वो भी लानत भेजेगी, तब वो रजम की सजा से बच जाएगी। और जब वो रजम की सजा से तो बच गई, या तो रजम हो जाती, जाहिर है उसके ऊपर अगर वो समझती कि हाँ उसने ऐसा किया है तो अब आदमी ने गवाही दे दी उस पर जुर्म साबित हो गया, लेकिन अगर वो समझती नहीं ऐसा नहीं है या वो झूठ बोल रही है, तो फिर उसको अपनी सफाई के अंदर चार कस्में खानी होंगी और पांचवी दफा उसको भी लानत करनी होगी अपने आप के ऊपर। और उसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी की जुदाई हो गई, ऐसी जुदाई के देखें दूसरी तलाक में, तलाके रजई में या खुला में तो दोबारा भी निकाह हो सकता है, इसमें तो कभी दोबारा निकाह नहीं हो सकता, हमेशा हमेशा के लिए ये हराम हो गई औरत उसके ऊपर। ठीक है, तो अब आगे इसी बात को बताया गया, वह यदराउ अनहा, और दूर करता है उससे, यानी इस औरत से टाल सकता है इस औरत से अजाब, अजाब को अजाब इससे टल सकता है, इस औरत से अजाब दूर हो सकता है। यानी क्या मतलब, ये सजा रजम की सजा से ये औरत बच सकती है, किस तरह? अंतशहादा अरबा शहादत बिल्ला, कि अगर वो गवाही दे चार गवाहियां अल्लाह के नाम पर। तो ये सोचें ये बड़ी बात होती है, अल्लाह के नाम पे कसम खाना, लियान उसे होता है, लियान में ये की जाती है। तो चार कसमें खाना अल्लाह के नाम की, और आज अगर लोगों के लिए कसम की कोई अहमियत ही नहीं, गवाहियां भी झूठी और इस तरह की सारी बातें लेकर आ जाते हैं। इन्नहु लमिनल कादिबीन, के वो बेशक मेरा शोहर जो है ये झूठों में से है, इसको चार दफा कसम खा के ये कहना होगा कि मेरा शोहर झूठों में से, मैं सच्ची हूं, यानी मैंने ऐसा नहीं किया। वल खामिसा, और पांचवी दफा वो ये कहे अन्ना गज़ब अल्लाह अलैहा, कि अल्लाह का गजब हो मेरे ऊपर, इन काना मिन सादिकीन, अगर वो कौन मेरा शोहर, मेरा सादिकीन सच्चों में से, अगर वो सच्चों में से है तो मेरे ऊपर अल्लाह का गजब हो। तो औरत के लिए लानत के लिए ये अल्फाज हैं कि मेरे ऊपर अल्लाह का गुस्सा हो, और मर्द के लिए वो अल्फाज हैं, आप देख लें कि लानत कितनी बड़ी बात है और अल्लाह का गजब कितना बड़ा बात है। अब क्या होगा? अब अगर तो औरत झूठी है तो आखरत में इसकी सजा है, अल्लाह तो देख रहा है ना। अगर वो सच्ची है और मान जाती है तो वो उसको रजम कर दिया जाएगा, क्योंकि वो शादीशुदा जानी है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आकर बात दोनों में खत्म हो गई, जुदाई हो गई और मामला आपस के अंदर इनके कोई रिश्ता नहीं रहा। अगर वो औरत हामिला है तो अब उसका जो बच्चा पैदा होगा वो इस औरत की तरफ ही मंसूब किया जाएगा, बाप का नाम इस बच्चे को नहीं मिलेगा। वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम, और अगर अल्लाह का फजल ना होता तुम पर, वरहमतुहु, और उसकी रहमत ना होती, वअन्न अल्लाह तव्वाबुल हकीम, और बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला हिकमत वाला है। यानी अगर अल्लाह ताला ये कानून ना देता तो आप सोचें आदमियों के लिए, किसी आदमी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। अगर वो अपनी बीवी को ऐसी सूरत में देख लेता तो वो क्या करता? अगर कहेगा कि ये मैंने अपनी बीवी को ऐसे देखा तो चार गवाह नहीं है, तो खुद ही कोड़े खाने शुरू हो जाएगा। अगर चुप रहे तो चुप कैसे रहे, वो चुप कैसे करके कैसे बर्दाश्त करे, ये उसकी बीवी का मामला है। तो अल्लाह ताला ने ये कानून देकर ना फजल किया तुम पर और रहमत की, और बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला हिकमत वाला है। इसके इन सारे अहकामात में बड़ी हिकमत है, और ये भी कि तौबा कबूल करने वाला है, कि इंसान को एक इंसेंटिव दिया जाता है तौबा का, कि अल्लाह ताला कबूल कर लेता है तौबा तो तौबा कर ले जो इस तरह के कभी अमल के अंदर मुलव्विस हो। अब ये देखें कि यहाँ पे अब आपको ये सारी सबक के अंदर ये पता चला कि ये जो अफवाहें उड़ानी होती है ना, कि या बैठ के मजलिसों के अंदर बातें करनी, इधर की उधर उधर की इधर, इनमें हमें कितना केयरफुल होना चाहिए। अगर जिना की नहीं भी लगाते ही, लेकिन उसका इसके साथ है, उसका चक्कर उसके साथ, उसकी उसके साथ, ये बातें एक मुसलमान माशरे की औरतों को जेब नहीं देती कि वो इस तरह की बातें आगे से आगे करें और पहुंचाएं। हम सोचते हैं कि सिर्फ जिना के ऊपर तो ये कजफ है, ठीक है वो तो है ही, हद कजफ है अगर जिना का किसी के ऊपर इल्जाम लगाया, लेकिन उससे जो छोटे इल्जाम है ये कोई बात नहीं है, और वो बेशक आप करते रहें और उनके ऊपर कोई बड़ी बात बिग डील नहीं है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि दोनों ही जुबान से मुतल्लिक चीजें, एक में जिना तक पहुंचा दिया, एक में जिना के रास्ते पे दूसरे को पहुंचा दिया, तो दोनों में आपको बहुत केयरफुल होना है। और इसके अंदर शादीशुदा लोगों के लिए भी जो रास्ता निकाला, ये भी लियान का आज तो नहीं है इसका कानून, लेकिन इसके बावजूद इस चीज को समझना चाहिए कि ये कितना बड़ा गुनाह है और कितनी बड़ी इसकी सजा है कि रजम की सजा दी जाती है। यानी ऐसे इंसान को अब जिंदा रहने का ही कोई हक नहीं रहा जो शादीशुदा हो और फिर भी ये करे। हाँ, मैंने जो आपको ऑब्स्टिकल्स बताए थे ना जिना के रास्ते के, उनमें एक ये भी ऑब्स्टिकल है ना, देखें कि अल्लाह ताला ने निकाह का रास्ता रखा, ये नहीं कहा गया किसी को कि अपनी जिनसी ख्वाहिशात को दबा के रखे, बस खत्म कर दो, और ये नहीं, अपनी ये भी इंसान की एक जरूरत है, तो उसको सही चैनलाइज किया कि तुम निकाह कर दो। और औरत चूंकि एक आदमी से ही उसके लिए काफी होता है तो एक आदमी से ही निकाह करेगी, लेकिन मर्द को कहा कि, क्योंकि देखिए ना आप, जिना भी मर्द ही करते हैं, कभी औरतों को थोड़ी आपने सुना कि वो जिना करती हैं जाके, मतलब उन्होंने जबरदस्ती किसी को रेप कर लिया, वो तो मर्द करते हैं इस तरह। मर्द को कहा कि तुम चार तक शादियां कर लो, चार तक निकाह कर लो, मगर इस रास्ते पे नहीं जाना, एक से नहीं तुम्हारी तस्कीन होती, दो कर लो, दो से नहीं तीन कर लो, तीन से नहीं चार कर लो, लेकिन ये काम नहीं कर सकते जिना का, इस रास्ते पर नहीं जाना। तो हर तरीके से इस्लाम ने इस रास्ते को बंद कर दिया, हर तरीके से, हर तरह से, हर तरफ से, जिस तरफ से भी इंसान फिसल सकता है कि वो कहे कि मेरे ऊपर शहवानी जज्बात आ गए, तो फिर बीवी कर लो। और खास तौर पे ऐसे लोगों के लिए वाजिब हो जाता है, उलमा कहते हैं उनके लिए वाजिब है निकाह करना, कि जिनके अंदर ऐसे शहवानी जज्बात ज्यादा होते हैं उनके ऊपर तो वाजिब है कि वो जरूरी निकाह करें, उनके ऊपर फर्ज के दर्जे पे हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीजों को समझना चाहिए। अब देखें बाकी जहां तक ऐसे मर्दों का ताल्लुक है जो दयूस है, मतलब दयूस के ऊपर तो जन्नत ही हराम है, वो ऐसे मर्द जो अपनी बीवी को किसी के साथ देख लें, या वो अपनी बीवी को या बेटी को या माँ को, यानी अपने घर की औरतों को कोई गलत काम में मुलव्विस देखते हैं, या गलत लोगों से मेल जोल देखते हैं, या गलत लोगों से ना भी ना महरमों से, लेकिन उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई गैरत नहीं आती, वो उसको या ये काम पसंद है, या फिर उसके लिए ये मॉडर्निज्म है, ये वो बड़ा लिबरल है वो बंदा, क्योंकि उसकी बेटियां कैसे भी लिबास पहन के बाहर निकल जाएं, उसकी बीवी जो भी मर्जी करे, जिनके साथ भी बातें कर रही है, जिनके साथ भी हंस बोल रही है, जो भी कर रही है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको दयूस कहते हैं। और दयूस के ऊपर जन्नत हराम है ना, हराम है दयूस के ऊपर। तो सोचे कि ये भी पता चल सकता है यहाँ पे आपको कि क्यों कहा गया कि जानी मर्द जानी औरत के साथ ही करे, क्योंकि वो अगर बेगैरत है ना, तो फिर उसके लिए भी बेगैरत ही औरत चल सकती है। फिर अगर उसके अंदर गैरत होती तो फिर वो कभी ऐसी औरत के साथ शादी ही ना करता, वो ऐसी औरत को पसंद ना करता जो इन चीजों में इन्वॉल्व होती है। आप देख लेना, जैसे आज के भी दौर में भी जो दीनी जहन रखने के हैं उनको ऐसी औरतें नहीं पसंद होती जो बहुत ही बेराह रोबी पे पड़ी हुई है, या जो उनके जिनकी पता है कि ये गलत रास्ते पे हैं, उनको नहीं पसंद होती। तो ये आपको पता चल गया, इसका भी क्राइटेरिया निकाह का, कजफ का भी आपको पता चल गया कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाने का क्या है, और लियान कब होता है, जब इल्जाम शोहर अपनी बीवी पे लगाए। अल्लाह ताला इन आयतों को समझने की हमें तौफीक अता फरमाए, और माशरे को पाक करने के लिए अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपना रोल अदा करें। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم